नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पांचवा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या 8। अध्याय का शीर्षक है भगवान ऋषभदेव के लक्षण। यस्य पांडवेय श्लोका उदाहरन्ति कोनु तत्कर्म राजर्षेर नाभेर अन्वाचरेत पुमान अपत्यताम अगाध्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा। रिपीट करते हैं क्या गद्य में करेंगे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के यशोगान में प्राचीन मुनियों ने दो श्लोक रचे, उनमें से एक यह है। महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है? उनके कर्मों तक कौन पहुंच सकता है? उनकी भक्ति के कारण भगवान ने अपना पुत्र उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तात्पर्य, इस श्लोक में शुद्धेन कर्मणा शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई कार्य भक्ति से नहीं किया जाता तो वह भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः के रूप में की गई है। जो कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वे ही शुद्ध हैं और वे ही प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अन्य सभी कर्म सतो रजो तथा तमोगुण के द्वारा दूषित हो जाते हैं, किंतु महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया। यहां तक कि यज्ञ के समय भी उन्होंने दिव्य कर्म ही किए थे, इसलिए उन्हें पुत्र रूप में भगवान की प्राप्ति हुई। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि शक्त भक्तिशक्तिकं। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में जिसको कि श्रील प्रभुपाद अपना घर मानते थे, आप सबके बीच में कार्तिक महीने में आके कुछ कृष्ण कथा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ही एक बड़े सम्मान और आनंद की बात है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ भक्तों को देख के बार बार आश्चर्य होता है कि कैसे प्रभुपाद जी के आंदोलन का चमत्कार हो रहा है। एक सूचना है कि अभी कीर्तन करते समय जी आवाज नहीं आ रही। देखिए, हम तो सुखदेव गोस्वामी नहीं हैं, उनको कोई माइक की जरूरत नहीं पड़ी थी। न जाने कैसे वो बोल रहे थे, लेकिन सभी लोग सुन पाते थे, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई थी। अब सुनाई दे रहा है आप सबको? अच्छा, कीर्तन करते समय कुछ मोबाइल फोन यहाँ वहाँ बजने की आवाजें आई, कृपया बंद कर दीजिए। वैसे अच्छा, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई है क्या जिनका फोन बजेगा उनको पर्ची काटनी होगी गौशाला के लिए दान? जिनका फोन बजे उनको 500 रुपया दान देना होगा मंदिर? तो है कोई जो देखने वाले जरा गौशाला के लिए दान ले लेना, जो भी ध्यान रखना जिनका फोन बजेगा। तो प्रसंग ये चल रहा है, महाराज नाभि का गुणगान हो रहा है। महाराज नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से स्वयं भगवान ने जन्म लिया। वैसे महाराज नाभि कि कोई संतान नहीं थे, तो ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने बहुत एक बड़ा यज्ञ संपन्न करवाया और भगवान प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वैसे अनेक लोग ऐसे बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि भगवान हर समय उनके सामने प्रकट हो जाएं। परंतु महाराज नाभि कोई साधारण यजमान नहीं थे उन ब्राह्मणों के लिए, ये भगवान के भक्त थे। और उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना की थी तो बहुत ही श्रद्धा से और भक्ति से की थी, इसलिए भगवान उनके सामने प्रकट होने के लिए तैयार हुए। क्योंकि भगवान केवल भक्ति से आकर्षित होते हैं, अन्य किसी चीज से नहीं। अब आपको याद होगा कि ब्राह्मणों ने जब भगवान से प्रार्थना की, जब भगवान के सामने प्रकट हुए, उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि यहाँ महाराज नाभि हैं, क्षमा कर दीजिए इनको, क्योंकि इन्होंने पुत्र की कामना लेके आपके लिए यज्ञ संपन्न करवाया है। वो कहना चाह रहे थे कि ये तो एक भौतिक इच्छा है और ऐसे भौतिक इच्छा के लिए आपको यहां बुलवाना स्वयं आपके धाम से उचित नहीं है, ये बल्कि एक मर्यादा का व्यतिक्रमण है। वो कह रहे थे कि जैसे बहुत ही धनी व्यक्ति के पास जाकर कुछ थोड़ा सा दान मांगना, ये तो कोई अकलमंदी की बात नहीं है। उसी तरह से भगवान तो स्वर्गलोक का वास दे सकते हैं, वो मुक्ति दिला सकते हैं, अपने धाम में वास दिला सकते हैं, इन सब चीजों को छोड़कर ये महाराज नाभि आपके पास एक पुत्र की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो खैर क्षमा कर दीजिए इनको। इस तरह से ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे थे जबकि भगवान प्रकट हुए थे। परंतु महाराज नाभि कोई साधारण एक भौतिक कामनाओं वाले व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के भक्त थे। और जैसे कि आज के श्लोक से स्पष्ट होता है, उनका हर एक कार्य केवल भगवान के संतुष्टि के लिए था, इसलिए उन्हें साधारण भक्त हम नहीं कह सकते। और इसलिए तो भगवान उनके सामने आने के लिए तैयार हो गए, और बाद में जाके उनके पुत्र बने वो तो और आगे की बात है। परंतु केवल भगवान जब प्रकट होते हैं तो इससे हमें समझना चाहिए कि उसमें कोई विशेष भक्ति अवश्य हुई होगी। तो भगवान प्रकट हुए उनके सामने और उन्होंने कहा कि मैं अभी वैसे आपने मेरे जैसा पुत्र चाहा है, अपत्यकामः प्रजां भवादृशीम। अपत्यकामा मतलब एक संतान की प्राप्ति के लिए की कामना रखते हुए, प्रजा मतलब पुत्र, भवादृशी मतलब आपके जैसा ही, आपके सदृश एक पुत्र मुझे चाहिए। तो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे जैसा कौन हो सकता है, मैं तो अद्वितीय हूं, अतुलनीय हूं, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ही आना होगा। मैं ही महाराज नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं, एक है विभिन्नांश जो भगवान से थोड़े अलग हो जाते हैं, और हम सब जीवात्मा विभिन्नांश है, परंतु भगवान के ऐसे भी विस्तार होते हैं जो उनसे अभिन्न है, उनको स्वांश कहते हैं, स्व अंश। तो महाराज ऋषभदेव एक स्वांश विस्तार थे भगवान के। और जब भी भगवान प्रकट होते हैं, कोई अवतार लेकर आते हैं, तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो महाराज ऋषभदेव का प्राकट्य जब हुआ तो उनका क्या उद्देश्य था? धर्मान दर्शयित कामान, किस तरह से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, तो उसका प्रदर्शन करने के लिए, उसको सारे दुनिया को दिखलाने के लिए महाराज ऋषभदेव प्रकट हुए। धर्म संस्थापनार्थाय, ये तो भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं, वो धर्म की स्थापना करते हैं। यहां अपने आचरण से ऋषभदेव महाराज दिखाना चाहते थे कि धर्म का पालन कैसे होना चाहिए। धर्म की स्थापना करना एक बात है, परंतु धर्म का पालन करना फिर यह दूसरी बात है। तो महाराज ऋषभदेव के प्राकट्य का कारण ये है। तो खैर, महाराज ऋषभदेव के जन्म के बाद उनका नाम ऋषभ इसलिए रखा गया क्योंकि महाराज नाभि ने देखा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जो भी ब्राह्मण आए थे, ज्योतिष आए थे, उन्होंने बच्चे के लक्षण देखे, पत्रिका देखी और समझ गए कि ये साधारण बच्चा नहीं है। इसके अंदर तो भगवत लक्षण प्रकट है जिससे कि हम जान सकते हैं कि यह साक्षात भगवान है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग माया के प्रभाव से महाराज नाभि ऋषभदेव को अपना पुत्र ही मानते थे, बड़े स्नेह से पालन पोषण किया और देखा कि इतने सद्गुणों से यह बच्चा युक्त है, इतना ऐश्वर्यशाली है कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो जैसे ही बच्चे की आयु थोड़ी बढ़ी, महाराज नाभि ने देखा कि अब ये बच्चा इतना योग्य है और इतना लोकप्रिय है कि उसे राजगद्दी पर बिठाना चाहिए और मुझे वानप्रस्थ लेने का समय आ गया है। तो वो चल पड़े बद्रिकाश्रम के लिए। वहां जाके उन्होंने भगवान नारायण की सेवा की और फिर भगवत धाम चले गए। इधर जब राज सिंहासन पर बैठे महाराज ऋषभदेव, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को संभाला। इंद्रदेव ने जब देखा कि महाराज ऋषभदेव के ऐसे गुण हैं, उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने वृष्टि बरसाना, बरसात बरसाना बंद कर दिया। तो महाराज ऋषभदेव मुस्कुराए कि इंद्रदेव क्या समझते हैं अपने आप को। तो उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से वर्षा, अजनाभ, अर्थ पृथ्वी उस समय अजनाभ कहलाती थी, तो अजनाभ वर्ष के ऊपर उन्होंने बरसाई और इस तरह से प्रजा का पालन किया, उनका रक्षण किया। तो अभी आगे चल के इस श्लोक पर हम आते हैं, आज के श्लोक में, जिसमें कि सारे ब्राह्मण आदि स्तुति कर रहे हैं महाराज नाभि के। और वो कहते हैं कि महाराज नाभि के कार्य, इनकी कोई तुलना नहीं है, कौन ऐसे भक्ति कर सकता है। और उनके कार्य हर एक उनके जो उनके भक्ति की भी तुलना कोई नहीं कर सकता है, इसलिए तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में हम अत्रि मुनि की कथा सुनते हैं। अत्रि मुनि के पत्नी का नाम था अनसूया। अत्रि मुनि भी एक पुत्र चाहते थे, वो प्रजापति थे ना। तो ब्रह्मांड में प्रजा की उत्पत्ति करने का कर्तव्य उनके ऊपर भी सौंपा गया था, ऐसे कई प्रजापति थे। तो तपस्या करने के लिए वो बैठे, बहुत कड़ी तपस्या उन्होंने की और उनकी प्रार्थना क्या थी, किनसे प्रार्थना की उन्होंने, जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, जगत का नियंत्रण करने वाले। अब उनको ये स्पष्ट ज्ञान नहीं था कि वास्तव में जगदीश्वर कौन है, इतना उनको पता था कि कोई जगदीश्वर है। वो नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। तो वैदिक ज्ञान से इस हद तक वो सहमत थे और जानते थे कि कोई तो नियंत्रा नियंता है, परंतु कौन है, उनका नाम क्या है, वो कैसे दिखते, ये नहीं पता था उनको, वो स्पष्ट ज्ञान नहीं था। और जब उन्होंने कहा कि आपके समान ही मुझे कोई एक पुत्र चाहिए, प्रजाम आत्म समाम, प्रजाम मतलब प्र और ज मतलब मुझसे उत्पन्न होने वाला एक बच्चा लड़का, आत्मसमम आपके जैसा कोई हो, तो कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु तीनों ही प्रकट हुए उनके सामने। वो एक पैर पे खड़े हुए थे और एक पैर पे खड़े होकर उनको जब सामने देखा तो उनकी ओर आगे बढ़े, एक पैर पे लड़खड़ाते हुए चले गए और उनको नमस्कार किया और उनसे कहा कि आप में से कौन मेरी प्रार्थना के जवाब में आए हैं। मैंने तो जगदीश्वर से प्रार्थना की थी, आप में से कौन जगदीश्वर है कृपया मुझे बताइए। वैसे देखा जाए तो महाविष्णु जगदीश्वर हैं, क्योंकि सृष्टि तो उन्हीं से उत्पन्न होती है ना। ऐसे भी कहा जा सकता है कि गर्भोदकशायी विष्णु सृष्टि करता है या वो जगदीश्वर हैं, उनके नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु को भी जगदीश्वर कहा जा सकता है क्योंकि वो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है, हर एक अणु के अंदर वो उपस्थित हैं। अब ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, उनको भी जगदीश्वर कह सकते हैं। और शिव जी, उनकी तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, सृष्टि के संहार के समय इतना महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं, तो उनको भी जगदीश्वर कहा जा सकता है। तो उन तीनों ने कहा कि हम तीनों आए हैं क्योंकि आपने हम तीनों का संबोधन किया। तो महाराज अत्रि मुनि जो हैं उनको पता नहीं चला कि क्या है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अत्रि मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे। क्यों नहीं थे? पहली बात तो पुत्र कामना करके भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, परंतु इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि भगवान जैसा, भगवान सदृश कोई पुत्र उनको मिले। प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यदि वो चाहते कि स्वयं भगवान हमारे पुत्र बने तो वो शुद्ध भक्त माने जाते थे, परंतु उन्होंने ऐसे नहीं मांगा। उन्होंने चाहा कि भगवान जैसे कोई पुत्र बने, इसलिए ऐसे माना जा सकता है कि अत्रि मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे। उनकी भक्ति मिश्र भक्ति थी, उनकी भक्ति में कोई मिलावट थी भौतिक कामनाओं की, इसलिए वो शुद्ध भक्ति हम नहीं कहलाती है। तो अत्रि मुनि के सामने फिर तीनों आए, कहा कि हम तीनों आए हैं, हमारा यहां प्रकट होना निष्फल नहीं हो सकता है, तो हमारे अंश रूप में हम तीनों ही आपके पुत्र बन जाएंगे। तो फिर शिव जी के अंश बने दुर्वासा, ब्रह्मा जी के अंश बने सोम जो कि चंद्रदेव हैं, और भगवान विष्णु के अंश बने दत्तात्रेय। इस प्रकार से ये तीनों जो हैं ये अनसूया के गर्भ से प्रकट हुए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि द्रोण और धरा, उनको भी कहा गया था कि आपको भी प्रजा की उत्पत्ति करनी है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो केवल भगवान चाहिए, हे भगवान केवल आप ही आइए हमारे पुत्र के रूप में और प्रकट होके आप सारे विश्व का उद्धार कर दीजिए, आप भक्ति का प्रचार प्रसार करिए, ज्ञान दीजिए और लोगों को बताइए कि कैसे आपके शरण में आना है और आपकी कृपा से सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। तो द्रोण और धरा, इनके मन में ये इच्छा थी कि स्वयं भगवान मेरा पुत्र, हमारा पुत्र बने और जीवन जगत का कल्याण करे, इसलिए द्रोण और धरा शुद्ध भक्त माने जाते हैं। और फिर वो आगे चल के बने नंद महाराज और माता यशोदा। हालांकि नंद महाराज माता यशोदा तो नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में भगवान के पिता और माता हैं। दूसरी ओर सुतपा और प्रश्नी, उनको तपस्या करनी पड़ी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द्रोण और धरा को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सुतपा और प्रश्न ने तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो वो इतने उत्तेजित हो गए, भाव विभोर हो गए, उन्होंने कहा तीन बार हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तीन बार आपने कहा ना, तो तीन जन्मों में मैं आपके पुत्र बन के आऊंगा। तो इस जन्म में मैं आपका पुत्र बनूंगा और मेरा नाम होगा प्रश्नी गर्भ। तो जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, 6 महीने की तपस्या के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान का जिस रूप उनके सामने प्रकट हुआ वो है प्रश्नी गर्भ। यही प्रश्नी गर्भ सुतपा और प्रश्नी के पुत्र। और फिर भगवान ने कहा कि इसके बाद आप अदिति और कश्यप बनोगे और मैं वामन देव के रूप में आपका पुत्र बनूंगा। और तीसरा जन्म आपका होगा जब आप वसुदेव और देवकी बनेंगे और उस समय भी मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो सुतपा और प्रश्नी को तपस्या करनी पड़ी, द्रोण और धरव को तपस्या नहीं करनी पड़ी। ऐसे भेद करते हैं प्रभुपाद जी और बताते हैं कि किस तरह द्रोण और धरव को फिर श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो खैर, अभी हम सब साधारण भक्तों के लिए, हम में से जो गृहस्थ भक्त हैं, गृहस्थ भक्तों के लिए तो मांगना कि भगवान आप ही हमारे पुत्र बन जाइए, ये इस कलयुग में तो संभव नहीं है। और न ही भगवान अब आने वाले हैं कलयुग में अंत तक, जबकि वो कल्कि के रूप में आएंगे। और अभी माता पिता का स्थान निर्धारित है, विष्णु यश उनके पिता हैं, तो और कोई पिता नहीं बन सकते, ना कोई माता बन सकते हैं। परंतु इतना तो गृहस्थ भक्त प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बहुत ही बढ़िया भक्त मिले, साधारण भक्त नहीं, ऐसा भक्त जो दुनिया को हिला डाले, जो ऐसा अच्छा प्रचार करे, ऐसा शुद्ध भक्त बन जाए, ऐसे कुछ प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे गर्भाधान संस्कार आदि अच्छी तरह से करके एक अच्छे संतान की उत्पत्ति करें, जो कि गृहस्थ आश्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वैसे इस विषय के ऊपर और काफी कुछ कहा जा सकता है, परंतु आज 2 आचार्यों के तिरुभाव दिवस है, भूगर्भ गोस्वामी और श्रील काशीश्वर पंडित। और ऐसी प्रथा है वैष्णव सभा में या समाज में कि वैष्णव आचार्यों के तिरुभाव दिवस पर और कभी कभी आविर्भाव दिवस पर भी उनका गुणगान किया जाता है। तो उचित रहेगा इस समय कि हम इन 2 आचार्यों के बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। भूगर्भ गोस्वामी का नाम शायद आपने सुना होगा, क्योंकि वो लोकनाथ गोस्वामी के साथ यहाँ सबसे पहले आए थे। लोकनाथ गोस्वामी जी का नाम भी आप सबने अवश्य सुना होगा। राधा विनोद जी की मूर्ति उनको प्राप्त हुई और फिर राधा गोकुलानंद मंदिर से संबंध भी उनका है लोकनाथ गोस्वामी का। तो भूगर्भ गोस्वामी उनके चाचा थे, लेकिन बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे, सबसे निकट के मित्र थे उनके। जब बंगाल में रहते थे तो दोनों भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे से अलग कभी भी नहीं होते थे। और इन दोनों के बारे में वैसे गौड़ीय ग्रंथों में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत नम्र थे। और कविराज गोस्वामी से भी उन्होंने कहा था कि ज्यादा हमारे बारे में कहना नहीं, तो कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत में इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया है। वैसे गौड़ गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि भूगर्भ गोस्वामी जो हैं वो वास्तव में प्रेम मंजरी हैं गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में जो भगवान के पार्षद होते हैं वो यहां गौर लीला में भी प्रकट होते हैं। तो प्रेम मंजरी वो यहां पर अब प्रकट हुई हैं भूगर्भ गोस्वामी के रूप में। ऐसे बताया जाता है कि बचपन से ही भूगर्भ गोस्वामी ने वैष्णव गुण प्रकट किए, उनके हृदय में बहुत ही गहरी भक्ति थी, बहुत दयावान थे, सदैव प्रसन्न रहा करते थे कि जैसे एक भक्त को रहना चाहिए, और कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय पे चर्चा करना वो जानते ही नहीं थे, न ही उनको कोई रुचि थी। इस तरह से उनका बचपन और उनकी युवा अवस्था कट गई। अब हुआ ये कि बाद में चल के जब उन्होंने गदाधर पंडित गोस्वामी से दीक्षा ली, उनके साथ में एक और भक्त थे जिनका नाम था भागवत दास, तो दोनों ने गदाधर पंडित गोस्वामी से दीक्षा ले ली और वहीं पे सेवा करते हुए रहे। चैतन्य चरितामृत में ऐसे बताया गया है कि फिर ये दोनों भूगर्भ गोस्वामी और गदाधर और भागवत दास दोनों वृंदावन चले आए। परंतु भूगर्भ गोस्वामी के वृंदावन आने के पीछे एक छोटा सा इतिहास है और इसका संबंध लोकनाथ गोस्वामी से है। लोकनाथ गोस्वामी ये महाप्रभु के निकट के पार्षदों में से थे। जब वो महाप्रभु के पास आए एक बार, तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन चले जाओ, और गुप्त रीति से महाप्रभु ने बताया कि देखो ये गोपनीय बात मैं कह रहा हूं, अभी किसी को बताना नहीं, मैं आगे चल के संन्यास लेने वाला हूं, और संन्यास लेकर फिर मैं भी वृंदावन चले आऊंगा, तो इस समय मैं आपको वहां पे मिलूंगा। तो जब लोकनाथ गोस्वामी ने यह बात सुनी कि महाप्रभु संन्यास आश्रम को स्वीकार करने वाले हैं, तो उनका हृदय टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगे कि आपका विरह हम कैसे सहन करेंगे, आप ऐसे छोड़ के जाएंगे, आपके सुंदर लंबे काले केश ये कट जाएंगे, निकल जाएंगे, और आपको संन्यास आश्रम की तपस्या स्वीकार करनी होगी, ये तो हमारे लिए असहनीय है। तो महाप्रभु ने फिर आलिंगन किया लोकनाथ गोस्वामी को, उनको सांत्वना दी, बहुत सारे आध्यात्मिक आदेश और उपदेश दिए और कहा कि चिंता नहीं, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। और फिर वो वहां से लोकनाथ गोस्वामी वापस गए। जब भूगर्भ गोस्वामी ने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी की ये दशा हुई है, तो भूगर्भ गोस्वामी ने अपने मित्र से कहा, लोकनाथ गोस्वामी से कहा, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ में, और फिर दोनों वृंदावन की ओर निकल पड़े। उन दिनों में तो कोई रेलगाड़ी वगैरह नहीं थे, तो पैदल ही सब आए यहाँ पर, और पैदल चल के चलते चलते बंगाल से काफी लंबा रास्ता है, बंगाल से चलते 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 आखिर वो यहाँ पे ब्रज में आ पहुंचे। उधर लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का संग मुझे चाहिए, उनके अलावा मैं रह नहीं सकता, मेरे लिए जीना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्हें उनके कान तक खबर पहुंची कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, और लेकर अब वो जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी से अब वो दक्षिण की ओर गए हैं, दक्षिण भारत की ओर, तो वो निकल पड़े दक्षिण भारत की ओर। वहां जाके देखा तो खबर मिली कि वो तो अभी वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं, तो फिर से वो आगे गए, ऐसे पहुंचते पहुंचते फिर वो वृंदावन आ गए वापस, बहुत घूम फिर के। फिर यहां देखा कि महाप्रभु भी यहां से निकल पड़े हैं, प्रयाग गए हैं, वापस बंगाल चले गए, फिर पुरी चले गए। उस समय महाप्रभु उनको स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि अब यहां वहां घूमना नहीं, ब्रज में ही रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, केवल मुझे ढूंढने के लिए ब्रज छोड़कर यहां वहां मत जाना, यहीं पर रहो। फिर लोकनाथ गोस्वामी वहीं पर रहे भूगर्भ गोस्वामी के साथ में। तो दोनों भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की यहां जो लीला स्थलियां हैं उनको ढूंढ निकालो, विशेष रूप से जितने भी महत्वपूर्ण वन हैं जिनमें कि श्री कृष्ण गवों को चराते थे और गोपियों के साथ लीला करते थे, उन वनों को ढूंढ निकालो। वैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बहुत बाद में आए ब्रज में, उनके काफी पहले भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से वृंदावन आने वाले भक्तों में से ये सबसे पहले हैं और सबसे वरिष्ठ भी थे। तो फिर उस समय अब वो क्या करते, किससे पूछते कि ये वन कहाँ है भाई, भांडीर वन कहाँ है, भद्र वन कहाँ है, लोह वन कहाँ है। यहां किसी को कुछ पता नहीं था, हालांकि महाप्रभु भी भ्रमण कर चुके थे, परंतु अब उन्होंने ये आदेश भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी को दिया था कि वनों को ढूंढ निकालो। अब आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक हैं वो तरह तरह के पद्धतियों से कुछ ढूंढ निकालना चाहते हैं, संशोधन आदि करके, परंतु भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी का तरीका क्या था, वो केवल यहां वहां भगवान के ऊपर निर्भर होके जोर जोर से बोलते थे, हे भांडीरवन, हे तालवन, हे खदीरवन, हे महावन, प्रकट हो जाइए हमारे सामने। इस तरह से वो सारे व्रज में घूमते फिरते थे। और वृंदा देवी है यहां, जिनके पीछे स्थान का नाम है वृंदावन। तो जब उन्होंने देखा कि किस तरह से, किस भाव से ये दो गोस्वामी गण वनों को ढूंढना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इनके हृदय में वो प्राकट्य कराया, वो स्थान, वो जानकारी उनको दे दी। फिर वो जान गए कि हाँ ये भांडीर वन है, हाँ हाँ ये ताल वन है, ये कुमुद वन है, ये भद्र वन है इत्यादि। इस तरह से द्वादश वनों को उन्होंने ढूंढ निकाला। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को ढूंढना चाहते हैं तो अवश्य अपना प्रयास भी करना चाहिए, परंतु अंततः भगवान अंदर से मार्गदर्शन देंगे हमें। और जितनी हमारी भक्ति आगे बढ़ती है उतनी ज्यादा भगवान हमें अंदर से बुद्धि और वो मार्गदर्शन देंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। तो इस प्रकार से देखिए अद्भुत ढंग से इन लीला स्थलियों का प्राकट्य हुआ। आजकल के वैज्ञानिकों के संशोधन की तरह नहीं था, वो अपने आप से वृंदा देवी की कृपा से ये सब जानकारी प्राप्त हो गई। तो इधर यहाँ पे दोनों ही लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी अपना भजन करते रहे। भूगर्भ गोस्वामी का नाम ऐसे क्यों पड़ा? वैसे शाखा निर्णय अमृत नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि क्योंकि उनका जन्म भी पृथ्वी से हुआ था इसलिए उनका नाम रखा गया भूगर्भ। परंतु यहां ब्रज में भूगर्भ गोस्वामी जमीन के अंदर किसी गुफे में जाके भजन करते थे ताकि कोई बाहर से लोग, कुछ आने जाने वाले लोग, कुछ आवाज न सुनाई दे वगैरह, तो अंदर जाते थे। भू अर्थात पृथ्वी, गर्भ अर्थात कोई गुफा, इसलिए उनका नाम पड़ गया भूगर्भ गोस्वामी। और उनकी समाधि अब यहाँ पे है राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में, श्री रूप गोस्वामी के समाधि के पास में। तो अगली बार जब आप राधा दामोदर के मंदिर में जाएंगे और हो सकता है आज भी जाएं, भूगर्भ गोस्वामी के समाधि में जाके वहाँ क्षमा याचना करें, हमारी जितने भी गलतियाँ हुई हैं भक्ति में, और आप हमें कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि हम भी आपके चरण कमल में रह के शुद्ध भक्त बन जाएं। तो आज का दिवस है कार्तिक महीने की शुक्ल चतुर्दशी में इनका तिरुभाव इस दिवस पर हुआ था। उनके कई शिष्य भी हुए, चैतन्य दास और ऐसे भी और भी एक प्रेमी कृष्णदास थे, मुकुंदानंद गोस्वामी भी थे, उनके कई शिष्य यहां पर वृंदावन में हुए। और आज काशीश्वर पंडित का भी तिरुभाव दिवस है। गौड़ गणोदेश दीपिका नाम के ग्रंथ में ऐसे बताया गया है कि काशीश्वर पंडित वैसे कृष्ण के एक सेवक थे गोलोक वृंदावन में, या बल्कि हैं, जिनका नाम था भृंगर, और एक सेवक थे जिनका नाम था भंगुर। तो भृंगर बन गए काशीश्वर पंडित और भंगुर बन गए गोविंद। चैतन्य चरित अमृत आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। आपने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु के निजे सेवकों के नाम थे गोविंद और काशीश्वर पंडित। तो गोविंद उनकी निजी शारीरिक सेवा करते थे और काशीश्वर पंडित की सेवा थी महाप्रभु को भीड़ में उनको सुरक्षित रखना। काशीश्वर पंडित वैसे बहुत बलवान थे, हृष्ट पुष्ट थे, शरीर थे, बहुत ताकत थी उनके शरीर में। तो उस ताकत का प्रयोग भी उन्होंने भगवान की सेवा में किया। तो ऐसे बताया जाता है कि जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, तो आप तो जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में कितनी भीड़ होती है, उस समय भी हुआ करती थी। तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते, महाप्रभु को देखकर भी उनके पास आने के लिए वो चाहते थे, उनके चरणों को छूने के लिए चाहते थे। तो काशीश्वर पंडित अपने बल से, अपने बलवान शरीर से, अपने भुजाओं से वो भीड़ को दूर रखते थे ताकि किसी का स्पर्श जो है वो महाप्रभु के दिव्य शरीर से न हो। जब रथ यात्रा के उत्सव में कीर्तन हुआ करता था और महाप्रभु बीच में कीर्तन करते थे, उस समय भी काशीश्वर पंडित ऐसी सेवा करते थे। तो काशीश्वर पंडित का जन्म छत्र नाम के एक गांव में हुआ जो हुगली जिले में है, बंगाल में, और उनके पिताजी का नाम था वासुदेव भट्टाचार्य। वहां पे उसी गांव के पास में एक स्थान में उन्होंने राधा गोविंद और श्री गौरांग महाप्रभु के विग्रहों की स्थापना की और एक मंदिर का निर्माण भी किया। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं अपने तात्पर्यों में कि उनके गृहस्थ लीला में, अर्थात जब माँ श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे तो इस मंदिर में वो गए थे वल्लभपुर में, जिसकी स्थापना काशीश्वर पंडित ने की थी। तो श्रील काशीश्वर पंडित ईश्वरपुरी के शिष्य थे, गोविंद भी ईश्वरपुरी के शिष्य थे, और दोनों ने मिलके अपने गुरु महाराज की सेवा बहुत ही अच्छे ढंग से की, बहुत हृदय से की, ईश्वरपुरी के अंतिम सांस लेने तक। अपने तिरुभाव के पहले ईश्वरपुरी ने काशीश्वर पंडित और गोविंद दोनों को आदेश दिया कि जब मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरे ही तिरुभाव के बाद में आप दोनों को मैं आदेश देता हूं कि आप जाके महाप्रभु की सेवा करना, ये आपके लिए सेवा है। तो ईश्वरपुरी के तिरुभाव के बाद काशीश्वर पंडित तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और गोविंद सीधे जगन्नाथपुरी आए। महाप्रभु से मिलके कहने लगे कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मुझे और काशीश्वर पंडित को आपकी सेवा करनी है। काशीश्वर पंडित थोड़े समय बाद तीर्थ यात्रा समाप्त करके आएंगे, लेकिन मैं अभी यहां उपस्थित हूं आपकी सेवा में। चैतन्य महाप्रभु भी तो ईश्वरपुरी के शिष्य थे, तो वो बड़े असमंजस में पड़ गए, व्याकुल हो गए, ये कैसे हो सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए, कहने लगे कि भट्टाचार्य, मैं बहुत बड़ी विडंबना है मेरे लिए, असमंजस में पड़ गया हूं। मैं क्या बात है, देखो गोविंद है ये मेरे पास आया है, गोविंद मेरा गुरु भाई है और काशीश्वर पंडित भी मेरे गुरु भाई हैं, और दोनों ही मेरे गुरु महाराज के बहुत ही निकट के निजी सेवक हैं, बहुत ही प्रिय सेवक हैं, और जो इस तरह से निकट की सेवा मेरे गुरु महाराज के लिए करते हैं वो तो मेरे लिए वरिष्ठ हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो मैं उनकी सेवा कैसे स्वीकार कर सकता हूं, ये तो मर्यादा के का उल्लंघन हो जाएगा, व्यतिक्रमण हो जाएगा। परंतु दूसरी ओर ये भी है कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है इन दोनों को कि वो आके मेरी सेवा करें, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं बड़ा व्याकुल हूं, बताइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य हंसने लगे और कहने लगे कि गुरु के आदेश की प्रधानता है हमेशा, मर्यादा से अधिक गुरु के आदेश का महत्व होता है। यदि गुरु कोई आदेश देते हैं और उस आदेश का पालन करने में साधारण मर्यादा का उल्लंघन होता भी हो तो गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो फिर महाप्रभु संतुष्ट हुए और गोविंद ने उनकी सेवा आरंभ की, और जब काशीश्वर पंडित आए उन्होंने भी सेवा प्रारंभ की। अब ऐसे समय बीतता गया और प्रतिदिन काशीश्वर पंडित महाप्रभु की सेवा किया करते थे। कीर्तन के समय, दर्शन के समय, और काशीश्वर पंडित महाप्रसादम की सेवा भी करते थे। 7 भक्त नियुक्त किए गए थे महाप्रभु के द्वारा महाप्रसाद का वितरण करने के लिए, और विशेष रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद उनमें से एक काशीश्वर पंडित थे। अब ये लीलाएं सारी जगन्नाथपुरी में हो रही थी, और महाप्रभु का के तिरुभाव का समय जब निकट आ रहा था उस समय यहां वृंदावन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। वो क्या थी? रूप गोस्वामी को गोविंद देव प्राप्त हो गए। रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया था कि आपको सारे विग्रहों को पुनः ढूंढ निकालना है जिनकी स्थापना वज्रनाभ कर चुके थे 4,500 वर्ष पूर्व। तो रूप गोस्वामी बहुत ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं नहीं मिले, अंततः उनको विग्रह प्राप्त हो गए। ये भी एक बहुत सुंदर लीला है अपने आप में। जब विग्रह प्राप्त हुए तो उन्होंने छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया यहां, और उनकी अर्चा सेवा शुरू हो गई। अब उनको सेवकों की आवश्यकता थी, पुजारियों की आवश्यकता थी। अब खबर जल्दी पहुंच गई जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के कानों तक कि गोविंद देव का विग्रह प्रकट हो गए हैं। तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने काशीश्वर पंडित को बुलाया और कहा कि जाओ काशीश्वर, वहां गोविंद देव प्रकट हुए हैं ब्रज में। रूप गोस्वामी के निर्देशन में वहां गोविंद देव की सेवा करना। तो काशीश्वर पंडित ने जब यह आदेश सुना तो उनका हृदय टूट गया, वो प्राय बेहोश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो प्राण ही त्याग दूंगा लेकिन आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो महाप्रभु ने उनको भी बहुत सांत्वना दी और आदेश दिए, बहुत बातचीत करके उन्होंने कहा कि ठीक है काशीश्वर, देखो तुम्हारे ऊपर मैं बहुत विशेष कृपा कर रहा हूं। और महाप्रभु ने स्वयं एक मूर्ति को प्रकट कराया। वो कैसी मूर्ति थी? कृष्ण की मूर्ति थी परंतु सांवले रंग की नहीं। जैसे महाप्रभु के दिव्य शरीर की कांति है, पिघले हुए सोने की कांति, ठीक उसी रंग की एक मूर्ति उन्होंने प्रकट करा के दी कि ये है श्री, ये विग्रह है, मुझसे अभिन्न है। तो इस मूर्ति की सेवा करोगे तो बस मुझसे कोई दूरी का अनुभव नहीं करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में इस विग्रह के रूप में रहूंगा। और इस विग्रह का नाम फिर हुआ गौर गोविंद। और काशीश्वर पंडित फिर बड़े भारी हृदय से जगन्नाथपुरी से निकल पड़े और यहां पर आए वृंदावन में। सारे यहां गौड़ीय वैष्णव बहुत ही प्रसन्न हुए काशीश्वर पंडित को देखकर, उनका स्वागत किया। गौर गोविंद की मूर्ति को देखकर भी बहुत खुश हुए। और फिर काशीश्वर पंडित ने गौर गोविंद की मूर्ति गोविंद देव की बाएं ओर रख के दोनों विग्रहों की सेवा करना प्रारंभ कर लिया। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। सारे गौड़ीय वैष्णव अब इन विग्रहों का दर्शन करने आ जाते, और एक के बाद एक फिर अन्य विग्रह भी जो हैं वो प्रकट होने लगे वृंदावन में, और धीरे धीरे से मंदिर भी यहाँ पे स्थापित होने लगे। तो काशीश्वर पंडित यहाँ अपने अंत तक थे और यहाँ भी उनकी बहुत सी लीलाएं हुई हैं। काशीश्वर पंडित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ है। अभी गौर गोविंद और गोविंद देव दोनों ही विग्रह हैं जयपुर चले गए हैं, तो आज भी उनका तिरुभाव दिवस है। उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमें गोविंद देव और गौर गोविंद के चरण कमलों में आश्रय दिलाएं और शुद्ध भक्ति दिलाएं। श्रील भूगर्भ गोस्वामी की जय। श्रील काशीश्वर पंडित गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 9 बज गए हैं।